भक्ति के अनुप्रेक्षा लेक्चर नंबर 145 ओम नमः सिद्धे कार्तिकीय जो है उनके द्वारा लिखित जो कार्तिकीय अनुप्रेक्षा उसके हम धर्म भावना को देखते हुए पृष्ठ क्रमांक 40 पर आए हैं। यहाँ जो विशेष उन्होंने कथन किया है उसके बारे में देखते देखते अभी हम यहाँ आखिर के पैराग्राफ तक आए हैं। पेज नंबर 40
पृष्ठ पर हमने नीचे के दूसरे पैराग्राफ का तात्पर्य देखा था के प्रमाणे प्रमाण नय द्वारा जीवादि पदार्थों ने जानी ने जे श्रद्धान करे ते सम्यक दृष्टि थाई छे। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ तक तो पढ़ा था। अहीं आ विशेष जाणवू के नय वस्तुना एक एक धर्मना ग्राहक छे। ग्राहक का अर्थ क्या है? ग्रहण करने वाला उसको ग्राहक करते। ग्रहण करना का अर्थ क्या है? जानना। क्योंकि ज्ञान द्वारा जब ग्रहण करेंगे वो कुछ उसके हाथ पैर नहीं है जो हाथ से ग्रहण करेगा। तो ज्ञान ग्रहण कर रहा है, इसका अर्थ है ज्ञान जान रहा है। तो ये जो नए है वो वस्तु के एक एक धर्म के जानने वाले हैं, ग्रहण करने वाले ग्राहक है। वो क लगाने से करने वाले ऐसा होता है। चालक गाड़ी चलाता है उसको चालक कहते हैं। वाहन वो वाहक ड्राइवर को वो वाहक भी करेंगे। तो ऐसे यहाँ ग्राहक कहा है। अनेते पोत पोताना विषय रूप धर्म ने ग्रहण करवामा समान छे तो पण अने वो अपने अपने विषयों को ग्रहण करते हैं। उस अपेक्षा तो सभी समान कहे जाएंगे, फिर भी पुरुष पोताना प्रयोजन वश यानी जो जीव है वो प्रयोजन के वश से किसी को मुख्य करेंगे किसी को गौण करेंगे। तेने मुख्य गौण करीने कहे छे की बात है ना। यहाँ पर नए जो है वो अपने अपने विषय को जानने वाले होते हैं, परंतु कथन करने में किसी को मुख्य करेंगे। वैसे सभी नयों ज्ञान तो प्रमाण ज्ञान है, उसमें सभी नयों का ज्ञान गर्भित है, सभी धर्मों को जानता है। फिर भी कहने में किसी को मुख्य करेंगे, किसी का पहला नाम लेंगे या किसी का वर्णन कर रहे अन्य का नहीं कर रहे। जिसका नहीं कर रहे उसको कहेंगे ये गौण है, जिसका कर रहे हैं उसको कहेंगे ये मुख्य है। जेम जीव नामनी वस्तुमा अनेक धर्म छे तो पण चेतनपणु आदि प्राण धारण पणु अजीवों थी असाधारण जोई। क्या कहते हैं? उसका चैतन्य जो लक्षण है वो अन्य अजीवादि से भिन्न है, और प्राण धारण जो उसका लक्षण है वो भी अजीव से भिन्न है। तो उसको कहेंगे असाधारण, जो अजीव के साथ जो कॉमन नहीं है, सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है, उसको कहेंगे असाधारण यानी विशेष। तो अजीवों थी विशेष जोई यानी असाधारण जोई। ए अजीवों थी જીવને જુદો બતાવવા માટે પ્રયોજનવશ મુખ્ય કરી ચેતન વસ્તુનું જીવ નામ રાખ્યું. વિશ્વ મેં પાંચ અચેતન વસ્તુએ હૈ, એક ચેતન વસ્તુ હૈ, તો ચેતન વસ્તુ કા નામ જીવ રખ દિયા, ક્યોંકિ પ્રાણ ધારણ પણ ઉસમે વો લક્ષણ હૈ. એ જ પ્રમાણે સર્વ ધર્મોને પ્રયોજનવશ મુખ્ય ગૌણ કરવાની વિધિ જાણવી. જૈસે વસ્તુ મેં વસ્તુત્વ ગુણ હૈ તો ઉસકે કારણ ઉસકો હમને વસ્તુ કહે દિયા. वो तो सभी वस्तुओं में लागू होगा, क्योंकि उसका जो सामान्य धर्म है वस्तुत्व, उसकी अपेक्षा से हम द्रव्यों को वस्तु कहेंगे. अहीं एज आशय थी अध्यात्मनी कथनी में मुख्य ने तो निश्चय कहो छे तथा गौण ने व्यवहार कहो छे, यानी मुख्य सो निश्चय और गौण सो व्यवहार. ત્યાં અભેદ ધર્મને તો પ્રધાનપણે નિશ્ચયનો વિષય કહ્યો. દેખો, જીસકો મુખ્ય કરેંગે વો નિશ્ચય હૈ. યદિ હમ પર્યાય કો મુખ્ય કરકે કથન કરેંગે તો પર્યાય ભી નિશ્ચય હો જાયેગી. પરંતુ યહાં અધ્યાત્મ કી બાત હૈ, અપને આત્મા કે અનુભવ કી બાત હૈ, તો યહાં હમેશા પ્રધાનપણે અભેદ ધર્મ કો હી મુખ્ય કિયા જાયેગા, ઉસી કો નિશ્ચય કહેંગે હમ. क्योंकि उसी का लक्ष्य करने से, उसी का आश्रय करने से, उसी में एकाग्र होने से आत्मानुभव होने वाला है, इसलिए अभेद धर्म को निश्चय कहा. अध्यात्म में यदि हम भेद का कथन करेंगे उसको भी मुख्य बना सकते हैं, अध्यात्म में अभेद को मुख्य करेंगे. तो अभेद धर्म ने तो प्रधानपणे निश्चय नो विषय कहो, અને ભેદ નયને ગૌણ કરી વ્યવહાર કહ્યો. પણ દ્રવ્ય તો અભેદ છે, તેથી નિશ્ચયનો આશ્રય દ્રવ્ય છે તથા પર્યાય ભેદરૂપ છે, તેથી વ્યવહારનો આશ્રય પર્યાય છે. ક્યાં કહેતે એ નિશ્ચય નય ઓર વ્યવહાર નય. તો અધ્યાત્મ મેં આત્માનુભવ કરના હૈ તો અભેદ કો મુખ્ય કિયા જાતા હૈ. तो अध्यात्म में तो निश्चय, जो निश्चय व्यवहार की जब बात आती है तो वहां तो अभेद है, सामान्य है, उसको निश्चय कहेंगे, और जो पर्याय है, भेद है, उसको गौण करके उसको व्यवहार कहेंगे. यानी वो तो जहां भेद के विकल्प भी है उसको भी व्यवहार कहेंगे हम वहां पर. यह अध्यात्म की शैली है. त्यां प्रयोजन आ छे के, क्योंकि प्रयोजन के अनुसार मुख्य और गौण किया जाता है. अब कोई बहुत ही अज्ञानी है, अज्ञानी ने जो आत्मा के संबंध में अजान है, तो उसको पहले तो भेद करके ही समझाएंगे, तो वहां तो भेद को मुख्य किया जाएगा. तो जहां जो प्रयोजन है, प्रयोजनवश मुख्य या गौण किया जाता है. तो यहां प्रयोजन क्या है, त्यां प्रयोजन आ छे के वस्तु ने भेद रूप तो सर्वलोक जाने छे, अने जे जाने छे તેજ પ્રસિદ્ધ છે, તેનાથી તો લોક પર્યાય બુદ્ધિ છે. ક્યાં કહેના ચાહતે, ભેદ કો તો સભી જાણતે હૈ. ભેદ કૈસા, પર્યાય કી અપેક્ષા ભેદ કરેંગે. અભી હમ બડી સ્થૂલ મોટી પર્યાય કહેંગે, એ મનુષ્ય હૈ, એ હમને દેખા ને સંસારી હૈ, સિદ્ધ એસા કહેંગે. તો હમ યા વિક્ષોભસમ જ્ઞાન ચલ રહા હૈ, તો ક્યા હમ ઇતને હી હૈ, ભેદ હૈ ને. જીવ મેં જ્ઞાન હૈ, દર્શન હૈ, સુખ હૈ, એ અનંત ગુણ હૈ, તો ઇતને ભેદ હૈ સારે, કે અભેદ અખંડ વસ્તુ હૈ, અભેદ અખંડ હૈ. પરંતુ યહાં ક્યા કહેતે હૈ, એ ભેદો કો તો સભી જાણતે હૈ, પરંતુ અભેદ કો જાણકર ભેદ કો ગૌણ કરકે, જીસકો કહેંગે ના ભેદ કા આશ્રય લેના, ઉસી સે સમય દર્શન હોગા. તો એ ભેદ કો તો સભી જાણતે હૈ, और पर्याय बुद्धि, यानी पर्याय जितना ही अपने को मानना उसको कहते हैं पर्याय बुद्धि. पर्याय को जानना वो पर्याय बुद्धि नहीं कहलाती, क्योंकि ज्ञानी है वो पर्याय को भी जानेंगे ने, क्या अकेले अभेद को ही जाने, वो भेद अभेद सबको जानेंगे, तभी तो उस ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहेंगे. प्रमाण ज्ञान जो है, समीचीन ज्ञान जो है, पूरी वस्तु को जानने वाला ज्ञान है, तो भेदा भेदात्मक वस्तु को जानेगा. परंतु यहाँ जो अज्ञानी है वो भेद को जानता है और उतने ही अपने को मानता है। पर्याय इतना ही मैं हूँ, अरे मैं बहुत कमजोर, पहले परद्रव्य रूप ही अपने को मान रहा है, ये शरीर ही मैं हूँ, अभी शरीर बुढ़ा हो गया तो मैं बुढ़ा हो गया, मैं कमजोर हो गया, मैं रोगी हो गया, मैं पैरालाइज हो गया, अपने को वैसा ही मानता है। अब उससे हटकर शास्त्र पढ़ा है तो क्या मानता है, अरे मैं तो इतना अल्पज्ञानी हूँ, बहुत रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, ऐसा वो उस दिन बात की थी ना, वो किसी का फोन आया था, वो आत्मा का ध्यान करने जाते हैं तो सारे विकार ही विकार ही दिखाई देते हैं। पर्याय में है उसकी ना नहीं है, अपने को उतने मात्र मान लेना, क्या उसी समय वो सामान्य अभय त्रिकाली ध्रुव वहां विद्यमान है कि नहीं है, पूरे केवल ज्ञान शक्ति का पिंड, अनंत शक्तियों का पिंड उसी समय है, तो ये हमारे ज्ञान पर निर्भर है, हम अपने आप को किस रूप में देख रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं कि ये जो व्यवहार है जिसको कहेंगे कि जो भेद रूप जो वस्तु है उसको तो सभी लोग जानते हैं, जे जाने छे तेज प्रसिद्ध छे, तेनाथी तो लोग पर्याय बुद्धि छे। ये अनादि से जीव की पर्याय बुद्धि क्यों चल रही है, भेद को जानता है और उतने मात्र को अपने को मान लेता है। अर्थात जीव ने, अभी इसी वाक्य का अर्थ फिर बता रहे, जीव ने नर नारकादिक पर्याय छे, नर यानी क्या पता है, मनुष्य, और नारकी तो पता है, आदि में तीर्यंच देव भी समझना, तो ये चार पर्याय चार गतियों में तो घूमता है, तो ये सारी पर्याय जो है उनकी राग द्वेष क्रोध मान माया लोभादि पर्याय छे, ये नर नारकादि तो लंबे काल तक चलने वाली स्थूल पर्याय जिसको कहा था, जिसको व्यंजन पर्याय भी कहते हैं, लंबे काल तक चलती है, अब एक एक समय की विकारी पर्याय क्रोध मान माया लोभ वगैरह पर्याय छे, तथा ज्ञान ना भेद रूप मति ज्ञानादि पण पर्याय छे। कौन कौन सी पर्याय ली, एक तो लंबे काल चलने वाली मनुष्य तीरंच आदि पर्याय, क्रोध मान माया लोभ आदि विकारी पर्याय, और तीसरी कौन सी पर्याय ली, मति ज्ञानादि में क्या लेना है, हाँ परंतु उसमें क्या समझना है, क्षोभशम ज्ञान रूप अल्प ज्ञान रूप पर्याय है, ज्ञान की पर्याय है। देखो एक तो नर नारकादि ने जिसको हम कहेंगे ना असमान जाति द्रव्य पर्याय, या जीव की भी वो मनुष्य रूप से पर्याय भी ले सकते हैं, दूसरी विकारी पर्याय, और तीसरी वो ज्ञान गुण है अपना स्वभाव भाव है, परंतु उसकी भी अल्प विकसित पर्याय है। तो ज्ञान ना भेद रूप मति ज्ञान आदि पण पर्याय छे, ए सर्व पर्यायों ने ज लोग जीव माने छे। अपने को इतना ही मानते ना कि मैं मनुष्य हूं, मैं बहुत क्रोधी हूं, या कोई कहेगा मैं बहुत दयालु हूं, और मैं बहुत कुछ शास्त्र का जानने वाला हूं, इतने को ही उसने अपने को जीव माना। तेथी ए पर्यायों मा, अभी इन सभी पर्यायों में अभेद रूप अनादि अनंत एक भाव रूप चेतना धर्म ने ग्रहण करी। अब इन्हीं सभी पर्यायों में विद्यमान ऐसे जो अभेद अंश है द्रव्य का, जो कायम वैसा का वैसा है, एक रूप है ने वैसा का वैसा विद्यमान, ये जो कम अधिक होना उत्पाद व्यय होना ये तो पर्याय में चलेगा, परंतु उसी समय जो ध्रुव अंश है, ध्रुव क्यों कहा, वैसा का वैसा है तभी तो उसको ध्रुव कहा, उसमें भी वेरिएशन होने लगे तो उसको ध्रुव कौन कहेगा, तो वो एक सदृश परिणाम कहेंगे उसको, कब से है, अनादि से और अनंत काल तक रहने वाला है, ये जो स्वभाव भाव है उसमें कभी भी कोई वेरिएशन नहीं होगा, त्रिकाल एक रूप एक सदृश परिणाम है। तो ये जो है अभेद रूप सभी पर्याय में क्यों विद्यमान है, अभेद रूप अनादि अनंत एक भाव रूप चेतना धर्म को यहां मुख्य किया, उस चेतना धर्म ने ग्रहण करी, तेने निश्चय नयनो विषय कही। पर्याय भी है, वो भेद रूप है उसको व्यवहार ने का विषय बताया, और जो अभेद वैसा क्या वैसा एक रूप सामान्य उसको निश्चय ने का विषय कहा। जीव द्रव्यनु ज्ञान करावियो, अभेद नय भी है ना, भेद की भेद रूप जैसे है पर्याय है वैसे ध्रुव अंश भी है, तो पूरा जीव कैसा है उसका ज्ञान कराए। अने पर्याय आश्रित भेद नय ने गौण करियो, क्या कहा, एक को मुख्य किया, निश्चय नय कहा, किसको, अभेद नय को। कौन सा अभेद, ध्रुव एक सदृश त्रिकाली, जो उसको नाम अलग अलग दे दो, पारिणामिक भाव कहो, ध्रुव भाव कहो, चैतन्य धर्म रूप, अन्वय रूप, सदा एक समान, सामान्य कहो। और ये पर्याय नय को या भेद नय को क्या किया, यहाँ गौण कर दिया है, वहां पर भेद है उसको गौण किया है। अभेद दृष्टि मा ते भेद देखा तो नथी, जब हमने भेदों को गौण ही कर दिया है और द्रव्य को अभेद दृष्टि से देख रहे हैं, तो उसमें भेद दिखाई देंगे कि नहीं, उसमें भेद है कि नहीं है, परंतु हम जिस दृष्टि से देख रहे हैं उस दृष्टि को भेद दिखाई नहीं देते। यदि वहां भी अभेद दृष्टि को अगर भेद दिखाई दे तो दृष्टि खोटी हो जाएगी कहेंगे। जब हम भारत एक अखंड ऐसा देखने जाते हैं, ये भारत है हमारा, तो उसमें क्या क्या दिख रहा है, कोई कहे हमको राजस्थान दिख रहा है, कोई कहे हमें महाराष्ट्र दिख रहा है, गुजरात, नहीं ये तेरी दृष्टि अभी बराबर नहीं है, तुझे एक अखंड भारत नहीं दिखाई दे रहा है, तुझे टुकड़े टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। तो भेद भारत में कौन कौन से देश है, तो वहां भेद को मुख्य किया था, अब अखंड भारत को देखना है तो हमने भेदों को गौण कर दिया। हमेशा हम देखे यहाँ जैन समाज इकट्ठी होने वाली है, जो जो नवकार मंत्र करते हैं तो सारी जैन समाज आई वहां पर। हमने कहा वहां कौन कौन आए थे, हमने किनको बुलाया था, जैनों को बुलाया था। कोई कहे क्या, अरे वहां श्वेतांबर भी थे, सानकवासी भी थे, तो उसने कहा किसको देखा, भेदों को देखा, क्या ले? तो यहां तो अभेद को, अभेद की दृष्टि में भेद नहीं दिखाई देते। जब अभेद की चर्चा होती है तो लोग पूछते तो उसमें पर्याय है कि नहीं है, तो पर्याय की क्यों चिंता पड़ी है, पर्याय होती है द्रव्य में, ये तो हमने जान लिया है। अभी हम द्रव्य को किस रूप से देख रहे हैं, हम नए से देख रहे हैं, तो अभेद दृष्टि से देख रहे हैं, अभेद दृष्टि में भेद नहीं दिखाई देंगे। तेथी अभेद नयनु दृढ़ श्रद्धान करावा माटे कहूं, उसका दृढ़ श्रद्धान है ना, अभी अनादि से क्या है, पर्याय को ही जानता है और पर्याय इतना ही अपने को मानता है, क्योंकि ये जो अभेद है वो तो जैसे कोई वस्तु दिखाई देती वैसे तो दिखता नहीं है, तो उसको तो हमें सोचना है, विचारों में लेना है, तो उसका दृढ़ श्रद्धान करने के लिए कहूं कि पर्याय नय छे ते व्यवहार छे अभूतार छे असत्यार छे। पर्याय को जानने वाला जो व्यवहार नय है उसको असत्य क्यों कहा, झूठा क्यों कहा, क्योंकि निश्चय नय जो है अभेद को दिखने देखने वाला जो है उसको दृढ़ स्थापित करना है, तो पर्याय को है ही नहीं है, उस नय को है ही नहीं कहेंगे, तो है नहीं यानी सर्वथा है ही नहीं, उसका अस्तित्व नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वो भी है। देखो समयसार नाम का ग्रंथ है, उसमें भी 11वें 12वें गाथा में ये बात आती, 11वें में कहा है सभी व्यवहार होते हैं वो सारे अभूतार्थ है और शुद्ध ने भूतार्थ है। शुद्ध ने कौन सा, अभेद को देखने वाला, कोई ऐसा ही, उनको पता था कि इसके आगे सभी ऐसा ही है, अपने बुद्धि से कुछ करामत दिखाने वाले जीव, तो 12वीं गाथा में बता दिया ऐसा नहीं कि वो सर्वथा झूठा है, तो उसको कहेंगे वो जाने लो प्रयोजनवान से, जाने लो प्रयोजनवान, ज्ञान का गेय है वहां है, वो उसकी विद्यमानता है और वो जानने में भी आएगा, परंतु श्रद्धान किसका करना है, अभेद नय ने जो वस्तु बताई है उस वस्तु का श्रद्धान करना है, हमें श्रद्धा में उसको लेना, श्रद्धा ने मैं उस रूप हूं ऐसी श्रद्धा। देखो ये क्या क्या, अभेद नय नु दृढ़ श्रद्धान करावा माटे कहूं के पर्याय नय छे ते व्यवहार छे, जे छे ते व्यवहार छे कहा, जे छे ते अपूतार्थ है, ये छे ते असत्यार्थ है, यदि पूरा ही असत्य होता तो छे क्यों कहते हैं, क्या कहा, जो है वह असत्य है, क्यों, किसके सामने, निश्चय नहीं के सामने, अभेद नहीं के सामने, भेद बुद्धि ना एकांत नु निराकरण करवा माटे, एकांत का अर्थ है सर्वथा भेद रूप ही मैं हूँ ऐसा मानने वाला है ना, ऐसा जानने वाला है, तो उसका निराकरण करना है, उसको रूल आउट करना है, उसका खंडन करना है। जब एकांत कहा तो सर्वथा भेद रूप मानने वाले जो मान्यता है उस मान्यता का यहाँ खंडन करना है। आम कहेवामां आवे छे, परंतु त्या एम नथी के आ भेद छे तेने असत्यार्थ कयो छे। क्या कहा, किसको असत्यार्थ कहा था? अभेद दृष्टि में वो भेद नए नहीं दिखाई देता था, तो व्यवहार नए को गौण करके असत्यार्थ कहा था। परंतु ऐसा नहीं समझना कि भेद ही असत्य है, भेद का वहां विद्यमानता ही नहीं है, उसकी हयात ही नहीं है, ऐसा कोई समझ ले तो ऐसा है नहीं। वस्तुनु ते स्वरूप नथी, जो ए प्रमाणे कोई सर्वथा रूप माने तो ते अनेकांत मां समझो नथी, पण सर्वथा एकांत श्रद्धा थी मिथ्या दृष्टि ज रहे छे। यानी कभी कभी वो शास्त्र पढ़कर भी ऐसी कहीं बातें आती है, व्यवहार हो अभूतार्थ हो और शुद्ध नहीं भूतार्थ है, तो वो सर्वथा मान लेता है, भेद है ही नहीं, वो झूठा ही है। तो इसको क्या हुआ, ये एकांत मिथ्या दृष्टि हो गया वो, क्योंकि उसने अनेकांत का स्वरूप सही रूप से नहीं जाना। अध्यात्म शास्त्र में जहाँ निश्चय व्यवहार ने कहा छे, त्या पण ए बन्ने ना परस्पर विधि निषेध पूर्वक सप्तभंगति वस्तु ने साध्वी। क्या कहते हैं, अध्यात्म में जो निश्चय, जो आगम का निश्चय व्यवहार और अध्यात्म का निश्चय व्यवहार अलग है, क्योंकि हम जो अन्यत्र जो कथन करते हैं, कहीं पर्याय को मुख्य करके कथन करेंगे, कहीं अभेद को मुख्य करके कथन करेंगे। अध्यात्म में हमेशा जो अभेद है उसकी मुख्यता करते हैं, क्योंकि उसका आश्रय लेना है, क्योंकि पर्याय बुद्धि तो अनादि से है ही है, उसको छुड़ाने के लिए अभेद को मुख्य किया है। तो अध्यात्म शास्त्र में जहां जहां ये निश्चय व्यवहार की बात कही है, वहां भी वो जो हमने विधि निषेध याद है ना, अस्ति नास्ति साद भंग जैसे कहे थे, वैसे यहां भी समझना चाहिए। वस्तु ने साध्वी ने वस्तु ने जानवी, जो एक ने सर्वथा सत्यार्थ मानवामा आवे अने एक ने सर्वथा असत्यार्थ मानवामा आवे तो त्या मिथ्या श्रद्धान थाय छे। क्या कहते हैं, निश्चय और व्यवहार नय के जो है अभेद और भेद की बात जो कही है, सर्वथा अभेद ही मानेंगे, सर्वथा भेद ही मानेंगे, या सर्वथा अभेद ही है, भेद है ही नहीं मानेंगे, तो ये क्या होगा, एकांत होगा, मिथ्यात्व होगा। माटे त्या पण कथनचित समझवू, कथनचित याने किसी अपेक्षा से। वळी अन्य वस्तु ने अन्य मां आरोपण करी प्रयोजन साधवामां आवे छे तेने उपचार ने कहेवामां आवे छे। अभी हमने जो देखा है, जो भेद है ना, भेद को एक ही वस्तु में भेद किए, पर्यायों के भेद हो या गुणों के भेद हो, प्रदेशों के भेद हो, तो एक ही वस्तु में भेद कहे तो उसको हमने व्यवहार नहीं कहा यहाँ पर। अब क्या कहते, एक वस्तु के दूसरे वस्तु में आरोपित कथन होगा। जैसे जीव ने कर्म को बांधा, जीव ने कर्म को उपशमाया, एक जीव वस्तु है और दूसरी कर्म है वो पुद्गल है, पुद्गल द्रव्य है, तो पुद्गल की अवस्था जीव ने बनाई या कर्म ने जीव को राग कराया, ये दो वस्तुओं का मिलकर कथन है, तो वो क्या है, उपचार नहीं कहा उसको, उपचरित है, यानी वो कहने के लिए है, वो है नहीं है परंतु उपचार से कहा जाता है। ये उपचार कैसे होता है, हम लौकिक में तो उपचार को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम आपके घर में आएंगे तो आप क्या कहेंगे, आइए आइए बैठिए, आप ही का घर समझो, तो हम समझ ही ले तो
मिथ्या दृष्टि है।
देखो, अन्य वस्तु ने अन्य मां आरोपण करी, ए और बी दो वस्तुएं है, तो ए वस्तु के बी वस्तु में आरोप करके प्रयोजन साधवा में आवे छे। प्रयोजन साधवा ने कुछ कथन करने में आता है, कोई बात बताई जाती है, तेने उपचार ने कहेवामां आवे छे, अने ते पण व्यवहार ने माज गर्भित छे एम कह्युं छे। क्या कहते हैं, व्यवहार नए दो प्रकार के होते हैं। पहली बात हमने देखी, एक ही वस्तु में भेद करना, उसको भी व्यवहार नए कहा, और दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक का दूसरे में आरोप करके कथन करना, वो भी व्यवहार नए है। तो व्यवहार नए दो प्रकार के हुए, एक में भेद करना वो भी व्यवहार, और दो का मिलकर कुछ कार्य हुआ ऐसा कहना वो भी व्यवहार। जहां प्रयोजन निमित्त होए त्यां उपचार प्रवर्ते छे, यानी निमित्त ने कार्य किया ऐसा ये उपचारिक व्यवहार कथन है, उपचार कथन है। अभी उसके लिए दृष्टांत देते हैं। जेम घीनो घड़ो कहिए, आपके घर में वो शक्कर का डब्बा है क्या? क्यों तेजल, अमोल को पूछने से कुछ फायदा नहीं। ये शक्कर की बर्नी है क्या, डब्बा है, क्या है? डब्बा है, हाँ। शक्कर का बनाया है तो स्टील का है, तो हम उसको क्या कहते हैं, शक्कर का। क्यों, दो वस्तुओं का वो उपचार से, हाँ, वो सहचर देखकर, उसका संयोग देखकर, उसी को हम डब्बे को ही शक्कर का डब्बा कह देते। अभी वो उस जमाने में घी रखते थे घड़े में, और उसको हम घी का घड़ा कहते है, है?
तो अभी किसी के घर में घी दिखता नहीं।
आजकल डाइटिंग चलता है ना। जेम घी नो घड़ो कहिए, त्या माटी ना घड़ा ना आश्रय घी भरियो होए। घड़ा तो मिट्टी का है, फिर भी उसको उसमें घी भरा है, तो उसको हमने घी का घड़ा नाम दे दिया। तो माटी ना घड़ा ना आश्रय घी भरियो होए, त्या व्यवहारी जनों ने आधार आधेय भाव देखाय छे। आधार और आधेय, आधार क्या है, मिट्टी का घड़ा आधार है, और वो आधार किसके लिए, किसका आधार है, उस आधार से कौन रहता है, तो घी, तो वो आधेय हुआ, आधार आधेय, यानी उसमें घी रखा हुआ है तो उसको घी का ही घड़ा कह देते हैं। तो ऊपर से डाले हुए को भी कहते हैं, उसके अंदर की बात क्या है। जैसे ये किसका शर्ट है अमोल जी, आपका है कि पापा का है? आपका है, तो आपका है कि कॉटन का है, ख्याल है ना? तो जो पहन रहा है तो हम कहेंगे नहीं, ये हमारा है, ये मेरी साड़ी है। तो ऐसे यहाँ कहते हैं, अरे व्यवहारी जन तो उसमें बहुत कुशल है, तो तेने आधार आधे भाई देखाय छे, तेने प्रधान करीने कहेवामां आवे छे के घीनो घड़ो छे। लोक पण एमज कहेवाती समझे, बरोबर समझते, घी का घड़ा लाओ तो वो मिट्टी का घड़ा जिसमें घी रखा है वो बराबर लेके आएंगे, अने घीनो घड़ो मंगावे तो तेने लावे, तेथी उपचारमां पण प्रयोजन संभवे छे। उपचार करने में भी प्रयोजन है, किसी हेतु से उसका उपचार किया है, और लौकिक व्यवहार में वो उपचार भी हम बराबर समझते हैं। एज प्रमाणे अभेद ने मुख्य करवामा आवे, त्या अभेद दृष्टि मा भेद देखा तो नहीं, उस दृष्टि से द्रव्य की तरफ देखते हुए वहां कोई भेद दिखाई नहीं देता, त्यारे तेमाज भेद कहे ते असत्यार्थ छे। अभेद की बात करते हुए उसमें भेद की बात करेंगे तो वो उसकी अपेक्षा क्या होगा, वो असत्यार्थ हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। एटले त्यां पण उपचार सिद्ध थाय छे। आ मुख्य गौणना भेद ने एटले रहस्य ने सम्यक दृष्टि जाने छे। ये किसको मुख्य किया है और गौण क्या है, गौण की भी विद्यमानता है वहां पर, फिर भी अभी उसको गौण करके एक को मुख्य किया है तो वो समय दृष्टि उसका रहस्य बराबर जानता है। मिथ्या दृष्टि अनेकांत वस्तु ने जानतो नथी, पण सर्वथा एक धर्म ऊपर दृष्टि पड़ता तेनेज सर्वथा रूप वस्तु मानी। ये सर्वथा पर्याय रूप ही मानेंगे, या कोई ऐसे भी है सर्वथा द्रव्य को कुटस्थ ही मानने वाले हैं, तो सर्वथा मान लेते हैं, अनेकांत स्वरूप वो नहीं जानते हैं। अन्य धर्मों ने का तो सर्वथा गौण करी, यानी आयदर सर्वथा गौण, सर्वथा है ही नहीं ऐसा कहेंगे, असत्यार्थ माने छे, यानी वो है ही नहीं ऐसा, उसकी सत्ता ही स्वीकार नहीं करेंगे, અને કાં તો અન્ય ધર્મોનો સર્વથા અભાવ જ માને છે, મિથ્યા શ્રદ્ધાને દૃઢ કરે છે. એ અનેકાંત સ્વરૂપ જાન કર, માન કર, વો મિથ્યા શ્રદ્ધા સે છૂટ કર, સમ્યક શ્રદ્ધા નહીં હોના થા તો એ સર્વથા માનને કે કારણ દૃઢતા કર લેતા અપને મિથ્યાત્વ. અને તે મિથ્યાત્વ નામની કર્મ પ્રકૃતિના ઉદયથી યથાર્થ શ્રદ્ધા થતી નથી. એ કૈસા કથન હૈ અભી? મિથ્યાત્વ નામ કે એક કર્મ ભી હૈ ઓર મિથ્યાત્વ જીવ કા ભાવ હૈ. તો યહાં કહેંગે મિથ્યાત્વ નામ કા કર્મ કે ઉદય કે કારણ યહાં જીવ કા મિથ્યાત્વ હો રહા હૈ. દો દ્રવ્યો મેં મિલકર કથન હૈ તો ઉસકો ક્યા કહેંગે? અવ્યવહાર કથન. ક્યો? વહાં ઉપચાર ક્યા હૈ? તો મિથ્યાત્વ નામની કર્મ પ્રકૃતિના ઉદયથી યથાર્થ શ્રદ્ધા થતી નથી, તેથી એ પ્રકૃતિના કાર્યને પણ મિથ્યાત્વ જ કહેવામાં આવે છે. મિથ્યાત્વ તો પ્રકૃતિ કા નામ હૈ. તો જીવ કે જો ભાવ હૈ મિથ્યા શ્રદ્ધાનું ઉસકો ભી મિથ્યાત્વ કહેતે હૈ. એ પ્રકૃતિનો અભાવ થતા, પ્રકૃતિ કા અભાવ કા અર્થ હોતા હૈ પ્રકૃતિ કે ઉદય કા નહી રહેના, અનુદય રહેના. યે પહેલે બાત આઈ થી ગાથાઓ મેં. હા, ક્યા હોતા હૈ વહાં પર? દર્શન મોહની ઓર અનંતાનુબંધી કે અનુદય હૈ. ક્યો? યા તો ઉનકા ઉપશમ હૈ, યા ક્ષય ઉપશમ હૈ, યા વહાં ક્ષય હૈ. યાદ આયે ને, પહેલે હમને સીખા થા ઇસમે. તો યહાં વહી બાત બતા રહે હૈ કે જબ યે મિથ્યા તો પ્રકૃતિ કા અભાવ હૈ, યાની ઉદય કા અભાવ હૈ, તબ ક્યા હોતા હૈ? તત્વાર્થોનું યથાર્થ શ્રદ્ધાન થાય છે. એ કર્મ કી તરફ સે યહાં કથન ક્યા જા રહા હૈ. જીવ સ્વયં અપને પુરુષાર્થ સે મિથ્યા તો કરતા હૈ, ઉસમે ભી ઉસકા ઉલટા વો પુરુષાર્થ લગ રહા હૈ. ઓર સુલઝ જાયેગા તો ભી સ્વયં અપને પુરુષાર્થ સે કરતા હૈ. ફિર વહાં સામને વૈસા નિમિત્ત હોતા હી હૈ. તો નિમિત્ત કી તરફ સે કથન કર રહે કે ઉસકા ઉદય કા અભાવ હોગા તો યહાં જીવ કો તત્વાર શ્રદ્ધાન હો જાયેગા. તો જીવ ક્યા સોચતે હૈ? ચલો અભી કર્મ કભી હમારે હટ જાયેંગે ઓર હમે કભી તત્વાર શ્રદ્ધાન હો જાયેગા, યાની કર્મ જગે દેગે તો હમકો હોગા, એસા માનતે હૈ. ક્યોંકિ શાસ્ત્ર મેં એસા પઢા હૈ ના, અભી યહાં ભી લિખા હૈ. દેખો ક્યા કહેતે હૈ કે તે પ્રકૃતિનો અભાવ થતા તત્વાર્થોનું યથાર્થ શ્રદ્ધાન થાય છે. તે આ અનેકાંત વસ્તુમાં પ્રમાણ નહીંથી સાત ભંગ દ્વારા સાધવામાં આવે તે સમ્યક્ત્વનું કાર્ય છે. ક્યા કહેતે? જો પ્રમાણ ઓર નય સે વસ્તુ કા અનેકાંત સ્વરૂપ નિશ્ચિત કરેગા ઉસી કો યે સમ્યક્ત્વ રૂપ કાર્ય હોગા. ઓર કથન કરને મેં ક્યા આયા હૈ? મિથ્યાત્વ કર્મ કા ઉદય નહીં થા ઇસલિયે ઇસ જીવ કો સમ્યક દર્શન હો ગયા. જબ એસા વો નિર્ણય કરતા હૈ તો સામને સત્તા મેં પડા હુઆ મિથ્યાત્વ ભી ઉસકા ઉદય રુક જાતા હૈ. યે તો સહજ વૈસી વ્યવસ્થા બન જાતી. તેથી તેને પણ સમ્યક્ત્વ જ કહેવામાં આવે છે એમ જાણવું. હા, પ્રમાણ ઓર નય સે, પ્રમાણ નય સે ડેશ બીચ મેં ડાલ ના, ક્યોંકિ પ્રમાણ સે ઓર નય સે વો જૈસે સંસ્કૃત મેં જોડકર શબ્દ બતાતે ને પ્રમાણ નય અધિગમ, તો વૈસે પ્રમાણ નય સે એસા ભી કહેંગે કહીં. ઓર સમજને કે લિયે ઉસમે ડેશ દેગે તો ભી કોઈ હર્જા નહીં. જૈન દર્શનની કથની અનેક પ્રકારથી છે. તેને અનેકાંત રૂપ સમજવી અને તેનું ફળ અજ્ઞાનનો નાશ થઈ, ક્યા કહેતે? એ જો સ્યાદવાદ કથન શૈલી હૈ, અનેક પ્રકાર સે હૈ ને કથન, કહી મુખ્યતા સે નિશ્ચય સે હોગા, કહી વ્યવહાર સે હોગા, કહી ઉપચાર સે હોગા, તો અનેક પ્રકાર સે ઉસકા કથન હોતા હૈ. તો ઉસકા જો અનેકાંત રૂપ યે કથન શૈલી હૈ તેનું ફળ ક્યા હૈ? યે જો સહી જ્ઞાન કરને કા ફળ ક્યા હૈ? લોક પૂછતે ને યે જાનને કા ક્યા ફાયદા? જાનને કા વહી ફાયદા હૈ કે જો ઉસ સંબંધી અજ્ઞાન થા ઉસકા નાશ હુઆ. તો જ્ઞાન જાનને કા ફાયદા હમ પૈસે મેં ગિનતે ને, કિતને પઢાઈ કી, ક્યા પઢા, MBBS હુઆ કે ઇન્જિનિયર હુઆ, તો કિસમે જ્યાદા લાભ હૈ? કિસમે હૈ જ્યાદા લાભ? જો જ્યાદા પૈસા કમાયેગા ઉસમે જ્યાદા લાભ હૈ. તો યહાં કહેતે ઉસ સંબંધી અજ્ઞાન કી નિવૃત્તિ હુઈ, वही उसका फायदा है। हम कहते हैं इतना डॉक्टर हुआ है और फिर कुछ कमाता नहीं है, क्या फायदा, क्या क्यों उसने पढ़ाई की इतनी। तो तेनु फल अज्ञानो नाश थई, उपादेयनी बुद्धि तथा वितरागतानी प्राप्ति छे। जो हे ये उपादेय तत्व है, हाँ, तो उपादेय को उसने उपादेय कर दिया और वितरागता की प्राप्ति हुई, यही वो ज्ञान का फल है। आ कथनो मर्म इतले रहस्य पामो मोटा भाग्य थी बने छे। क्या कहते हैं, ये जो अनेकांत स्वरूप जो है, वस्तु की जो कथनी है, तो जैन दर्शन की जो कथनी है उसका मर्म समझना, रहस्य समझना मोटा भाग्य थी बने छे। क्योंकि कितने दुर्लभ है, दुर्लभ बात है ना। पहले में पहले संगी पंचेंद्री नहीं होता, फिर हमने वो पूरी लिस्ट देखी थी। सुनकर भी समझना मुश्किल की बात है। आ पंचम काल मा हाल आ कथनी ना वक्ता गुरु निमित्त सुलभ नथी। वो सुलभ हुआ, सुलभ नथी। क्या कहते हैं, समीचीन वक्ता मिलना भी बहुत कठिन बात है। जिनागम में जिस पद्धति से कथन किया है उसका सही अर्थ खोलकर, जो हमारे भाग्य से तो गुरुदेव श्री कांजी स्वामी हुए, क्योंकि ग्रंथ तो सभी थे ना और पढ़ने वाले भी थे, परंतु उसका इतना सरल आसान अर्थ करके समझाया कि तो बच्चा भी समझ जाए। तो कहते हैं पंचम काल मा हाल आ कथनीना वक्ता गुरुनो निमित्त सुलभ नथी, तेथी शास्त्र ने समझवानो निरंतर उद्यम राखी, शास्त्र ने यथार्थ समझवु योग्य छे। कारण के मुख्यपणे तेना आश्रय सम्यक दर्शननी प्राप्ति थाई छे। क्योंकि वक्ता नहीं है तो शास्त्र ही अपने एकमात्र आधार है, तो बारंबार उसका सही अर्थ लगाना अपनी जिम्मेदारी है। जो के जिनेन्द्र प्रतिमानु दर्शन तथा प्रभावना अंगनु देखूं इत्यादि सम्यक्त्वनी प्राप्ति ना कारणों छे, तो पण। क्या कहते हैं, ये जब सम्यक्त्व प्राप्ति में बाह्य निमित्त कहेंगे, कहने में आए, कौन, जिन बिंब का दर्शन है, वैभव, जो स्वर्ग आदि में जो वैभव की प्राप्ति होती है, नरक आदि में जो वेदनाएं हैं, आदि अनेक अलग अलग कारण जो बताए हैं, फिर भी मुख्यता किसके है, शास्त्र श्रवण करूं भणूं तेने चिंतवन करूं, यानी उस पर विचार करना, धारण करूं इन्हें याद रखना, तथा हेतु युक्तिपूर्वक, हेतु इन्हें उसके संबंध में जो बताए जाते ना, ये क्यों है, ऐसा है, जिसको कहते परीक्षा करना उसकी, हाँ। और युक्ति ने प्रमाण और नए से जानना, उसकी युक्ति कहते हैं। तो हेतु युक्ति पूर्वक स्वमत परमत ना भेद ने, इतले तफावत ने, यानी स्वमत ने जिनमत और परमत ने अन्य मतियों के जो कथन आते हैं, तो उनके कथन, अभी कोई कहता है कि ईश्वर है, कोई कहता है कि ईश्वर करता है, ईश्वर है तो सभी कहते हैं, कोई ऐसे भी ईश्वर है ही नहीं मानने वाले भी है, कोई ऐसे मत, तो ईश्वर जगत का करता है मानता है, और जैनी कहते ईश्वर तो सर्वज्ञ वितरागी होते हैं। तो दोनों के कथन तो हमने जाने, तो उसमें सही कौन सा, इसका निर्णय हमें करना है। तो स्वमत परमत ना भेद ने तफावत ने जानी, नय विवक्षा समझी, वस्तुना अनेकांत स्वरूपनो निश्चय करवो, ए मुख्य कारण छे। किसका कारण है, सम्यक्त्व प्राप्ति के कारणों में मुख्य कारण कौन सा है, शास्त्र का श्रवण करना, उसको बराबर ठीक से समझना, धारण करना, चिंतन करना आदि आदि, और स्वमत और परमत के जो भेद है, उसमें जो अंतर है कथन में, वो जानकर, फिर नए विवक्षा समझकर अनेकांत स्वरूप का निश्चय करना, वस्तु कैसी है उसको अपने ज्ञान में निर्णय करना, ये सम्यक्त्व प्राप्ति का मुख्य कारण है। तेथी भवे जीवो ए તેનો એટલે આગમના અભ્યાસનો ઉપાય નિરંતર રાખવો યોગ્ય છે. નિરંતર કા અર્થ ક્યાં હોતા હૈ? હા પ્રભાબેન, નિરંતર કા અર્થ ક્યાં હૈ? કન્ટિન્યુઅસ. વો શબ્દ કૈસે તૈયાર હુઆ? નિરઅંતર, જિસમે કોઈ અંતર નહીં હૈ, યાને કોઈ ગેપ નહીં હૈ બીચ મેં. એસા કિસકા? આગમના અભ્યાસનો ઉપાય નિરંતર રાખવો યોગ્ય છે. ઉસમે ભી શાસ્ત્ર શ્રવણ કી બાત હૈ ને, ક્યોંકિ પઢતે ભી હૈ ને તો અપને બુદ્ધિ સે કુછ ભી અર્થ લગા લેતે, પોસિબિલિટીઝ બહોત હૈ. ક્યોંકિ શબ્દ હોતે ઉસકે અર્થ અનેક હોતે હૈ, તો સહી અર્થ કૈસા હૈ? જૈસે નિમિત્ત કે ભી કથન હોતે તો કહાં નિમિત્ત કી અપેક્ષા સે કથન હૈ, કહાં ભેદ કી અપેક્ષા સે કથન હૈ? યે તો શુરૂ મેં તો જાનના આતા હી નહીં, વો બાત નહીં હૈ, પરંતુ ઉસમેં હમારી ભૂલ હોને કે બહોત ચાન્સીસ હૈ. ઇસલિયે શ્રવણ કી મુખ્યતા હૈ, સમજને કી ભી મુખ્યતા હૈ. અબ આગે ઇસ બાત પર જો પ્રવચન હુએ હૈ ઉસકો પઢેંગે. યે બહોત લંબા ભાવાર્થ થા,
ક્યોંકિ આગે ઓર 30 પન્ને હૈ ઇસી કે ઉપર, 76 તક. દેખો બાત એસી હૈ કે યે જો આખરી પેરેગ્રાફ પઢા ઉસકો મેં દુબારા બતાના ચાહતા હું. अभी जो उज्ज्वला ने बात बताई उससे कॉन्ट्रडिक्टरी है. यहाँ क्या कहते देखो, जैन दर्शन नी कथनी अनेक प्रकार थी छे, तेने अनेकांत रूप समझवी अने तेनु फल अज्ञान नो नाश थई, उपादेय नी बुद्धि तथा वितरकता नी प्राप्ति छे. यहाँ तक तो आप समझ गए हैं. अभी यहाँ कह रहे हैं આ કથનનો મર્મ પામવો મોટા ભાગ્યથી બને છે. અભી ઇસકે ઉપર તો હમને બહોત બાર ચર્ચા કી હૈ. અબ આગે સમજાતે હૈ, આ પંચમ કાળમાં હાલ આ કથનીના વક્તા ગુરુનું નિમિત્ત સુલભ નથી. યે ગુરુ યાને મુનિરાજ, ઓર થોડા નીચે ઉતરેંગે તો સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ. ये पंचम काल में इन कथनी का कहने वाला कोई मिलना मुश्किल से हाथ में आता है. क्यों? कि हर एक जन अपनी दुकान खोल के बैठा है. हा? चाहे जो कुछ अपने मनगढ़ंत कल्पनाओं के अनुसार भी बोल सकता है, और जिसका अभ्यास नहीं होगा वह तो कहीं ना कहीं फंस जाता है. इसलिए उन्होंने क्या बताया, बात बताई ते थी શાસ્ત્ર ને સમજવાનો નિરંતર ઉદ્યમ રાખી શાસ્ત્ર ને યથાર્થ સમજવું યોગ્ય છે. દેખો યહાં ક્યા બતાના ચાહતે હૈ, કોઈ કિસી કો સિખાને સે વહ સીખતા નહીં હૈ, કિસી કો બુદ્ધિ દેને સે બુદ્ધિ બઢતી નહીં હૈ. યહાં હમ નિરંતર સ્વયં ઉદ્યમ રખેંગે, યાને પ્રયત્ન કરેંગે, જાનને કે कोशिश करेंगे तो सामने से ऐसा निमित्त सहज मिलता है. यहां ये बात बताना चाहते हैं कि निमित्त कार्य में कुछ नहीं करता. ख्याल में आया? यहां ये बताना चाहते कि तेरा कार्य क्या है, तो निरंतर उद्यमी रहना. किसके बारे में? शास्त्र को समझने के बारे में. क्योंकि शास्त्र में जो बात बताई है वह तो मुनिराजों ने या सम्यक दृष्टि जीवों ने जो बातें बताई हैं, इनका ओरिजिन तो सर्वज्ञ है, लेकिन इनको हम बार बार प्रयत्न करें. अभी आपने बताया कि हम अपनी मनगढ़ंत कल्पना के अनुसार उल्टा जा सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि शास्त्र ने समझवानो निरंतर उद्यम राखी ने, शास्त्र ने यथार्थ समझवो योग्य छे. देखो भाई, जिसके अभी संसार का किनारा नहीं आया है उसको भले ना तुम चाहे जितनी बात समझाएं, वो समझेगा ही नहीं. देखो अभी हमारे अरविंद भाई आते हैं तो मुझे बहुत याद आते हैं. आज एक फोन आया था, वो बहन किसी जैन घर में शादी की है, वह महाराष्ट्रियन सिक्के पी जात की लड़की थी. अभी जैनियों में शादी हुई तो जैन हो गई ना, तो किसी कारणवश हमारे घर में 2.5-3 साल पहले आई थी. उसकी सास, वो भी सगी नहीं, ऐसी कोई दूर की चाची वगैरह, उसको यहाँ ले आई थी, तो उसने उसको जबरन एक जैन तत्व परिचय पुस्तक दी थी, उसने मराठी में ली। उसके बाद उसको बच्चा हुआ, अभी वो बालक 1.5-2 साल का जो कुछ होगा, तो उसका लगातार गए 1-2-3 हफ्ते से फोन आते हैं, तो फिर उसको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, ऐसी चीज ये पुस्तक चाहिए वो पुस्तक चाहिए। इसलिए तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने उसको नए चक्र की पुस्तक चाहिए, भाई निश्चय व्यवहार जानना है, क्रमबद्ध पर्याय को जानना है, निमित्त उपादान की पुस्तकें ले ली उसने, आपने पुस्तक दी थी ना, सीडी ले ली। अब कहती है मुझे क्रमबद्ध पर्याय चाहिए। देखो उल्टी, मैंने 1.5-2 साल घुमा, मतलब क्या कहते हैं, गवाए। अब मैंने कहा आपने सिद्धांत प्रवेशी का तो सुनी ही होगी ना, मुझे याद नहीं था कौन है क्या कैसा है। नहीं, सुनी नहीं। तो मैंने उनको बताया मेरे पास डीवीडी भी है और वो MP3 भी है। नहीं, आप डीवीडी चाहिए, आप बोल रहे हैं ना। मैंने कहा हाँ हम बोल रहे हैं, तो आपकी डीवीडी, मैंने कहा वो बहुत महंगी है, आप ये ले लो। अरे क्या कहते हैं सर आप, हमने तो फजूल इतने पैसे खर्च किए हैं, ये 1,500 रुपया क्या चीज होती है। बोलो अभी वो लड़की को कितना, मतलब ये अंदर से उछाल आ गया। क्या कह रहे हैं कि जो समझने की कोशिश करेगा उसको सामने से समझाने वाला सहज ही मिलेगा, और हम ही कोशिश नहीं करेंगे तो क्या होने वाला है। सुनो, यहां तो निमित्त को प्रधान करके नहीं बताना चाहता हूं, मैं तो कहता हूं उपादान जागृत हो जावे तो सामने वैसा निमित्त मिले बिना रहेगा नहीं। इसमें ऐसा बिल्कुल मैं बताना नहीं चाहता हूं कि मैं ही बराबर सच बात बताता हूं, लेकिन मैं तो आगम के अनुसार ही बताता हूं। मेरी भूल भी होती होगी, पता नहीं मुझे, मुझे पता लग जाए तो मैं सुधार लूं। यहां जो कह रहे हैं कि तेती शास्त्र ने समझवानो निरंतर उद्यम राखी, शास्त्र ने यथार्थ समझू योग्य छे, कारण के मुख्यपने तो तेना आश्रय सम्यक दर्शन ही प्राप्ति था छे। अभी यहाँ ये 2-3 कारण बताए, जिनेन्द्र भगवान के जो दर्शन है और प्रभावना अंग का भी देखना है। अभी ये प्रभावना का अंग क्या होता है, खाली कोई पर्व के दिन आए तो मंदिर में जाके बत्तासे देवे नारियल देवे, वो प्रभावना नहीं। जैसा कोई जीव किसी को उपदेश दे रहा है, और मान लो कि वो मुनिराज है, मुनिराज उपदेश दे रहे हैं, तो वो सुनकर वही उपदेश दूसरे के पास किसी के पास पहुंचाना, यह भी प्रभावना अंग है। और अपने स्वरूप में गुप्तता, मतलब अपने स्वरूप में लीनता, ये तो निश्चय प्रभावना है। इस तरह के ये क्या कहते हैं कि सम्यक्तनी प्राप्ति ना कारणों छे, तो पन शास्त्र श्रवण करवूं, ये पहले बताया, शास्त्र श्रवण करवूं भणवूं तेने चिंतवन करवूं। वो कह रही थी बहन जिसका मैं बात कर रहा हूं, जिनकी बात कर रहा हूं, कि मुझे बहुत प्रश्न थे, ये ऐसा क्यों है ऐसा क्यों है। और जैसे जैसे मुझे इस बात का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लगा है, मेरे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। तो यहां देखो, चिंतवन करवूं धारण करवूं तथा हेतु अने युक्ति पूर्वक, हेतु यानी इसके कहने का प्रयोजन क्या है, युक्ति यानी न्याय क्या है इसके पीछे, ये स्वमत और परमत, स्वमत यानी यहां जैन दर्शन के जैन तत्वों के, और परमत यानी अन्य धर्मियों के अन्य मतियों के, भेद ने एटले तफावत ने जानी। फॉर एग्जाम्पल, ये भगवान जिसको कहते हैं, ईश्वर जिसको कहते हैं, क्या वह ईश्वर का सही स्वरूप है ऐसा, और यहां तो जिनेन्द्र भगवान का ऐसा ऐसा स्वरूप बताया कि जो पूर्ण वितरागी है, तो उनके विश्व बनाने का विकल्प ही कैसा आएगा, भाव ही कैसा आएगा। हाँ जी, इस तरह से अनेक बात हेतु और परमत ने भेद धारी जानी, नई विवक्षा समझी, वस्तुना अनेकांत स्वरूप नो निश्चय कर वो। यह विश्व व्यवस्था कैसी है, तो अनेकांत स्वरूप है, इसका हमें निश्चय होना चाहिए, क्योंकि किस अपेक्षा से कहां कौन सा वर्णन किया है। अभी हम कितनी बात बताएंगे, श्रीमद जी भी बोल के गए ने, जहां जहां जे जे योग्य छे, ये क्या बताना चाहते हैं, वस्तु ना अनेकांत स्वरूप का जो कथन किया है, जिस अपेक्षा से, जिस एंगल से किया है, वो समझना हमारा काम है। इसलिए क्या कहते, भव्य जीवो ए तेनो, एले कोनो आगम न अभ्यास नो उपाय, निरंतर राखो भाई, जितना हो सके शास्त्र स्वाध्याय तो करना ही चाहिए। ये बात बार बार स्वामी जी बता रहे हैं, और स्वामी जी जो बात बता रहे हैं वही बात पूर्व आचार्य ने भी बताई है, ख्याल में आया ना, कितनी बार बोलते थे बेचार कलाक तो स्वाध्याय जो ये विचार कला मुझे जमवानू कह रहे ऐसी बात है भाई, हमें अगर अपना स्वयं का कल्याण करना है तो अन्य बातों को गौण करते इसको मुख्य करना, यही इस मनुष्य भव का कार्य है। मुझे तो हुकमचंद जी भाड़ल की बहुत याद आती है, वो कहते हैं देखो ये आदमी इतना पर्टिकुलर है ना, वो रोज कल कौन कौन से काम करने के लिख के रखता है, 25 काम होते हैं दिन के, इसके 50 होते हैं, सबसे ऊपर लिखता है देव दर्शन, देव पूजन और शास्त्र स्वाध्याय। लेकिन जैसा जैसा दिन आगे जाता है, अरे इसको जरा बाद में करेंगे, पहले तो तिया में होके आएंगे, तिया समझते हैं ना, जाने वाला ना, तो उसे जाएंगे, फिर ये करेंगे, वो ऑफिस का वो काम रह गया, ऐसे करते करते वो जो पहले नंबर का था वो 25वें नंबर में आएगा, और जब तक तो पूरा दिन पूरा हो जाता है और वो काम वैसा ही रह जाता है। अब ये तो उन्होंने उदाहरण दिया है, ये बात अपने पे अप्लाई करें, हाँ फिर नहीं साहब आज तो हमारे घर में वो प्रसंग है ना, तो हमको जाना ही पड़ता है, कल क्या है, अरे साहब वो ऐसा है ना बाजू वाले के वहां वो हो गया, अब क्या हो गया, वो बाजू वाले के बाजू वाला मर गया, कर पत्थर सो का हो गया, उसके यादी जो है मतलब लिस्ट कभी पूरी नहीं होती भाई। ये तो हमें स्वयं के लिए सोचना है, वो दूसरा कितना भी बोले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वो तो मैं अनुभव कर रहा हूं ना, हाँ मैं अपनी बात कर रहा हूं भाई, हम दूसरे के लिए नहीं कह रहा हूं। देखो ये तो हमें समझना चाहिए कि मुझे किसको प्रायोरिटी देनी है, हम जिसको अधिक मूल्यवान समझेंगे, जिसकी दूसरी भाषा में इम्पोर्टेंट मानेंगे, उसके अनुसार अपना कार्य होने वाला ही है। जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट ड्रॉज द अटेंशन, आपकी भाषा में रुचि, हाँ आप कहते हैं रुचि अनुयायी वीर्य, जैसी रुचि होगी वैसा। अभी हमारी बेटी आके गई ना, बोलती पापा पापा एक काम करो, बोले क्या है भाई, वो तुम कहीं से भी वो कौन सा जमीन पे तारे आए ऐसा कुछ आया ना तुम, हाँ जो कोई पिक्चर आई ना वो जरूर देखना आप। मैंने कहा हाँ, तो जो तुम देखने वाले नहीं हो, खाली हाँ हाँ कहते हो, फिर काय को बोलती है ये रुचि अनुयायी वीर, ये मैं बताना चाहता हूं, क्या करें अभी चलो यहां तक तो हमने आपको जो उज्ज्वला ने बताया ये बात बिल्कुल सही है, हमें तो समझना तो बिल्कुल सम्यक दृष्टि के ही बात सुननी है, समझनी है, नहीं तो हम उसको अलग अलग अपेक्षा से, अपनी मनगढ़ंत कल्पनाओं की अपेक्षा से उल्टा गलत अर्थ कर सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूंगा अपना उपादान योग्य होगा तो वह जीव योग्य निमित्त के पास अपने आप जाएगा, या योग्य निमित्त उसके पास आएगा, दोनों में से एक होना है, अब आगे बढ़ते हैं। आई सम्यक दर्शन केवी रीते जानी शकाय एवा तत्वार्थ श्रद्धान ने कहे छे। ये जहां जहां तत्वार्थ लिखा है त्व त्व का डबल त होना चाहिए। जीव अजीव आदि नव प्रकार ना पदार्थों ने श्रुत ज्ञान प्रमाण थी अने तेना भेद जे न तेना वडे पोताना आदर एटले यत्न एटले प्रयत्न अने उद्यम थी माने श्रद्धान करे ते शुद्ध सम्यक दृष्टि छे। जो जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम संवर निर्जरा बंधने मोक्ष ए नव पदार्थ नु यथार्थ ज्ञान करवू ते सम्यक दर्शन छे। ये ऐसा कहां लिखा है, कुछ याद है बाबा? क्या लिखा? ये कौन से अधिकार में कितना नंबर का सूत्र? बहुत अच्छा। देखो बापा ने बताया कि तत्वार सूत्र में पहले अधिकार के दूसरे सूत्र में लिखा है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और यही बात बता रहे हैं ए नव पदार्थों नु यथार्थ ज्ञान करवू। ये ज्ञान करना हो, ज्ञान करने से श्रद्धान हुआ ऐसा बताया, ये उपचार का कथन है। ज्ञान जानने का काम करेगा और श्रद्धा मानने का करेगा, लेकिन कहेंगे ऐसा ते सम्यक दर्शन छे। जीव अजीव आदि नव पदार्थों स्वतंत्र छे, पृथक पृथक छे, जीव जीवपने छे, अजीवपने नथी। जीव अजीव अजीवपने छे, संवर संवरपने छे, आश्रवादीपने नथी, निर्जरा निर्जरापने छे, बीजा आठपने नथी। ये अस्थि नास्ति का बोल घटित कर रहे हैं। एम जाणवू ते ज्ञाननु कार्य छे, ते ज्ञाननु कारण सम्यक दर्शन छे। पण अहीं कार्य ने कारण नो आरोप आपीने ज्ञान ने सम्यक दर्शन कहेल छे। क्या कहा? कार्य क्या हुआ? सम्यक दर्शन, श्रद्धा गुण का कार्य। तो उसमें किसका आरोप किया? कारण कौन है? तो कहते ज्ञान। तो आप ही ने एम कहूं कि ज्ञान ने सम्यक दर्शन कहेल छे। ये समझ में आया अमन भाई?
कार्य ज्ञान लिया है।
हाँ जी,
कार्य में ज्ञान को लिया यहाँ पर। ते ज्ञान नु कारण सम्यक दर्शन छे, उसी वाक्य में लिखा है। पण ही कार्य ने कारण नो आरोप आपी ने।
कार्य में क्या हुआ? यथार्थ ज्ञान हुआ।
सम्यक दर्शन के कारण वो ज्ञान हुआ, ऐसा वहाँ सम्यक ज्ञान हुआ। यहाँ उसको कारण कहा है, कार्य उसको कहा है ज्ञान। यहाँ लिखा ना ज्ञान नो कारण सम्यक दर्शन छे। हम ज्ञान को हमेशा कार्य में लेते हैं, कारण में लेते हैं।
यहाँ तो बराबर दिया है कि ज्ञान नु कारण सम्यक दर्शन छे, वो मुझे ऐसा लगता है। वो आप देखो क्या कंफर्म करवाओ कि सम्यक दर्शन होने के पहले यथार्थ ज्ञान को भी सम्यक ज्ञान नहीं कहेंगे, इस अपेक्षा से ये बात साची है। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सम्यक दर्शन को कारण, सम्यक दर्शन कार्य, उसमें कारण सम्यक ज्ञान कहा है, यानी ज्ञान कहा है। उस अपेक्षा से मैंने ये बात बताई, कार्य क्या हुआ तो सम्यक दर्शन हुआ और कारण वो ज्ञान है। अब यहाँ तो जो बात है कि ज्ञान नु कारण सम्यक दर्शन छे, यानी यहाँ बताया सम्यक ज्ञान जो हुआ, क्योंकि देखो अभी हमें सम्यक्त्व यानी सम्यक दर्शन हुआ नहीं है। हाँ, सम्यक दर्शन हुआ नहीं है और हमारा ज्ञान बिल्कुल आगम के अनुसार कथन के अनुसार है, लेकिन श्रद्धा मान नहीं रही है, तो उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहेंगे। इसलिए सम्यक दर्शन को सम्यक ज्ञान का कारण कहने में आया है। बाकी बात कल करेंगे। जावानी के ज्ञान तय सूझे।